हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 49 and 50। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु अर्गावरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णात्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसा, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा। आराध्यो भगवान् ब्रजीशतनाय, तत्थाम वृंदावनम्, रम्या काशिदुपासना व्रजवधु, वर्गेनया कल्पिता, श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममालम्, प्रेम पुमर्थो महा, श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदम्, तत्राधरो न पर वंशी विभूषित करा नवनीरधाभा, पीतांबर दरुण बिंब फल धरुष्ठा, पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा, कृष्णात परम किमपि तत्व अहम् न जाने। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवी, वेदसाङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा, ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा, देवायतस्मे नमः। ಸ್ವೀಕೃತ್ಯಾ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಾಯಾಮುದೀರಯೇತ್. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ. ಪಂಚತತ್ವಾತ್ಮಕಂ ಕ್ಲೇಶಂ ಭಕ್ತರೂಪಸ್ವರೂಪಕಂ ಭಕ್ತಾವತಾರ ಭಕ್ತಾಖ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತಶಕ್ತಿಕಂ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಕಥಾಧಾರ ಶಿವಾಸದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಗ್ರಂಥರಾ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣ ಕೀ ಜೈ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದ ಅಧ್ಯಾಯ 18 ಜಿಸ್ಕಾ ಶೀರ್ಷಕ ಹೈ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಬಾಲಕ ದ್ವಾರ ಮಹಾರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಕೋ ಶಾಪ್. ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 49. ಇನ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೀ ಪವಿತ್ರ ಶಬ್ದೋ ಕೋ ಮೇರೆ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ ಕೀಜಿಯೆ. ಸುದ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕಹ ರಹೆ ಹೈ, ಇತಿ ಪುತ್ರ ಕೃತಾಘೇನ ಸೋನು ತಪ್ತೋ ಮಹಾಮುನಿ ಸ್ವಯಂ ವಿಪ್ರಕೃತೋ ರಾಖ್ಯ ನೈವಾಗಂ ತದಚಿಂತಯ. ಇತಿ ಪುತ್ರ ಕೃತಾಘೇನ ಸೋನು ತಪ್ತೋ ಮಹಾಮುನಿ ಸ್ವಯಂ ವಿಪ್ರಕೃತೋ ರಾಖ್ಯ ನೈವಾಗಂ ತದಚಿಂತಯ. ಇತಿ ಪುತ್ರ ಕೃತಾಘೇನ ಸೋನು ತಪ್ತೋ ಮಹಾಮುನಿ ಸ್ವಯಂ ವಿಪ್ರಕೃತೋ ರಾಖ್ಯ ನೈವಾಗಂ ತದಚಿಂತಯತ್. ಇತಿ ಪುತ್ರ ಕೃತಾಘೇನ ಸೋನು ತೃಪ್ತೋ ಸೋನು ತಪ್ತೋ ಮಹಾಮುನಿ ಸ್ವಯಂ ವಿಪ್ರಕೃತೋ ರಾಖ್ಯ ನೈವಾಗಂ ತದಚಿಂತಯತ್. ಶಬ್ದಾತ್ ಇತಿ ಪುತ್ರ ಕೃತಾಘೇನ, ಅಘೇನ ಮತ ಪಾಪ್, ಉಸ್ಕೆ ಪುತ್ರ ನೇ ಜೋ ಪಾಪ್ ಕಿಯಾ ಥಾ. ಇತಿ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜೈಸೆ ಉಸ್ಕೆ ಪುತ್ರ ನೇ ಮಹಾರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಕೋ ಇತ್ನಾ ಬಡ ಶಾಪ್ ದೇ ದಿಯಾ ಥಾ. ತೋ ಯೇ ಕೇ ರಹೆ ಹೈ, ಇತಿ ಪುತ್ರ ಕೃತಾಘೇನ, ಪುತ್ರ ನೇ ಜೋ ಉತ್ನಾ ಬಡ ಅಪರಾಧ ಕಿಯಾ ಥಾ, ಇತ್ನಾ ಬಡ ಪಾಪ್ ಕಿಯಾ ಥಾ. ಸೋನು ತಪ್ತೋ ಮಹಾಮುನಿ, ವೋ ಮಹಾಮುನಿ ಋಷಿ ಶಮೀಕ್ ಉಸ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅನುತಪ್ತೋ, ತಪ್ತೋ ಮನ ಉಸ್ಕೊ ಬಹುತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಹೋ ರಾ, ಅನುತಪ್ತೋ ಯಾನಿ ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಕರ್ ರಾ ಥಾ ಮಹಾರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತ್. ಈ ಶಮೀಕ್ ಋಷಿ ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಕರ್ ರಾ ಥಾ ಕಿ ಮಹಾರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಇತನೇ ಅಚ್ಚೆ ಸಂತ ಹೈ, ಇತನೇ ಅಚ್ಚೆ ಭಕ್ತ ಹೈ, ಔರ್ ಮೇರೆ ಪುತ್ರ ನೇ ಇತನಾ ಬಡಾ ಪಾಪ್ ಕರ್ ದಿಯಾ ಕಿ ವೋ ಮಹಾರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಕೋ ಶಾಪ್ ದೇ ದಿಯೇ ಹೈ. ತೋ ಇಸ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೋನು ತಪ್ತೋ ಮಹಾಮುನಿ, ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ ತಪ್ತೋ, ಉನ್ಕೊ ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಹೋ ರಾ ಥಾ. ಸ್ವಯಂ ವಿಪ್ರಕೃತೋ ರಾಜ್ಯ, ಸ್ವಯಂ ಯಾನಿ ಕಿ ಉನ್ಕೋ ಶಮೀಕ್ ಮುನಿ ಕೋ ವಿಪ್ರಕೃತೋ ಇಸ್ ತರ ಸೆ ಅಪಮಾನಿತ ಹೋತಾ ಹುವಾ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಾ ಕೆ ದ್ವಾರಾ. ರಾಜಾ ನೇ ಜೋ ಋಷಿ ಕಾ ಅಪಮಾನ ಕಿಯಾ ಥಾ, ಅಭಿ ಉಸ್ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ವೋ ಕ್ಯಾ ಸೋಚ ರಹೆ ಥೆ, ನೈವಾಗಂ ತದ ಚಿಂತಯತ್ ನ ಏವ ಅಘಂ, ಉನ್ಕೋ ವೋ ತೋ ಅಪರಾಧ ಲಗಿ ನೀ ರಾ ಥಾ, ವೋ ತೋ ಏಸಾ ಲಗ ರಾ ಥಾ ಯೇ ತೋ ಕೋಯಿ ಪಾಪ ಹೈ ನೀ, ತದ ಚಿಂತನ್ ಐಸಾ ವೋ ಸೋಚ ರಹೆ ಥೆ ಕಿ ಉನ್ನೋನೆ ರಾಜಾ ನೇ ಕೋಯಿ ಅಪರಾಧ ನೀ ಕಿಯಾ, ಬಲ್ಕಿ ಮೇರೆ ಬೇಟೆ ನೇ ಇತನಾ ಬಡಾ ಪಾಪ ಕಿಯಾ, ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ವೋ ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಕರ್ ರಹೆ ಥೆ. ಅನುವಾದ: ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮುನಿ ನೇ ಅಪ್ನೆ ಪುತ್ರ ದ್ವಾರಾ ಕಿಯೇ ಗಯೇ ಪಾಪ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಕಿಯಾ, ಉಸ್ನೇ ರಾಜಾ ದ್ವಾರಾ ಕಿಯೇ ಗಯೇ ಅಪಮಾನ ಕೋ ಗಂಭೀರತಾ ಸೇ ಗ್ರಹಣ ನಹೀ ಕಿಯಾ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ರೀತಿ ಸೇ ಸಮಝಾಯೆಂಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ದ್ವಾರಾ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜೈ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ಸಮಝಾ ರಹೆ ಕಿ ಅಬ್ सारी घटना स्पष्ट हो गई। महाराज परीक्षित द्वारा मुनि के गले में मृत सर्प डालना कोई गंभीर अपराध ना था, किंतु श्रृंगी द्वारा राजा का शापित होना गंभीर अपराध था। यह गंभीर अपराध एक मूर्ख मालक द्वारा हुआ था, अतएव वह परमेश्वर द्वारा क्षम्य था। यद्यपि पाप से मुक्त होना संभव ना था, महाराज परीक्षित ने भी मूर्ख ब्राह्मण द्वारा दिए गए शाप की ओर ध्यान नहीं दिया, उल्टे उन्होंने इस विषम स्थिति का लाभ उठाया और भगवान की इच्छा से श्रील सुखदेव गोस्वामी की कृपा के माध्यम से जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की। वास्तव में यह भगवत इच्छा थी और इस इच्छा पूर्ति में महाराज परीक्षित, ऋषि शमीक तथा उनका पुत्र श्रृंगी ये तीनों निमित्त मात्र थे। अतएव इनमें से किसी को कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि हर काम परम पुरुष से संबंधित। आगे श्लोक नंबर 50 में सूत गोस्वामी कहते हैं, प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिता न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रया। प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिता न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रया। प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिता न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः। प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिता न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः। शब्दात् प्रायश, प्रायश मन सामान्यता, साधवो लोके यानी संतगण इस संसार में, परैर द्वंद्वेषु योजिता, परैर अन्यों द्वारा, द्वंद्वेषु द्वेत में योजिता लगाए जाकर, न व्यथन्ति यानी पीड़ित नहीं होते, न हृष्यन्ति ना तो हर्ष मानते हैं, यत आत्मा गुणाश्रय, यत क्योंकि आत्मा स्वयं अगुणश आश्रय यानी वो दिव्य स्थिति तक पहुंच गए हैं। अगुण का मतलब होता है जो गुण रहित हो, निर्गुण। अनुवाद, सामान्यता आध्यात्मवादी अन्यों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते, ना ही वे सांसारिक वस्तुओं में हर्षित होते हैं, क्योंकि वे आत्मा में लगे रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आध्यात्मवादी जन ज्ञानी योगी तथा भक्त होते हैं। ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्म में तदाकार होने की सिद्धि प्राप्त करना होता है। योगी सर्वव्यापी परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं और भक्तगण भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। चूंकि ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान एक ही पराशक्ति की विभिन्न अवस्थाएं हैं, अतएव ये सारे आध्यात्मवादी प्रकृति के तीनों गुणों से परे होते हैं। भौतिक सुख दुख तीनों गुणों के प्रतिफल हैं, अतएव ऐसे सुखों दुखों के कारणों से आध्यात्मवादियों को कोई सरोकार नहीं होता है। राजा भक्त था और ऋषि योगी था, अतएव दोनों ही परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न इस दुर्घटना से अनासक्त थे। खिलाड़ी बालक भगवान की इच्छा पूर्ति में निमित्त मात्र था। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप शीर्षक 18वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। श्री प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालम् पंखुं लंघयति किरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण, जिसमें भगवान की अद्भुत कथाओं के विषय में बताया जाता है, उसका 18वां चैप्टर। इसमें सूत गोस्वामी ऋषियों को महाराजा परीक्षित के विषय में कि उनको किस प्रकार से ब्राह्मण बालक द्वारा श्राप मिला, तो उसके विषय में बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया, या कथा भगवत कथनी योरु कर्मण गुण कर्मा श्रया पुंभी संसेव्यस्ता बुभूषु भी। यानी बुभूषु भी का मतलब होता है जो अपना कल्याण करना चाहते हैं। वास्तव में हर एक जीव अपना कल्याण करना चाहता है, लेकिन उस कल्याण करने के लिए उसे क्या करना चाहिए वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। लेकिन शास्त्र कहता है या कथा भगवता, जो जो भगवान की कथाएं, कथनी योरु कर्मणा, वास्तव में बोलने और सुनने के योग्य कथनी यदि कुछ है जो कहने लायक है तो भगवान की कथा है। तो जो अपना कल्याण करना चाहते हैं उनको भगवान की कथाओं के विषय में ही श्रवण करना चाहिए। और जब भगवान की शुद्ध भक्त की कथा होती है तो उसके साथ भगवान की कथाएं रिलेटेड होती हैं। तब ऋषियों ने महाराज परीक्षित से कहा, श्लोक नंबर 11 में, सूत जीव समा सौम्य शाश्वती वशदम यश यस्तम शौशसि कृष्णस्य मर्त्यमानामृतम हिना, कि हम जैसे मरने वाले मृतों के लिए आप जो ये कथा बता रहे हो ना, यस्तम शौशसि कृष्णस्य, कितने सुंदर से ढंग से आप कृष्ण की कथाएं बता रहे हो, तो हमारे लिए अमृत के समान है। तो आप हमें इस कथा के विषय में सुनाते जाइए, क्योंकि हम जितना आनंद ले रहे हैं इस कथा का, तो जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं वो आनंद में वृद्धि होती जा रही है। भगवान की कथा श्रवण करने के अतिरिक्त और कोई कार्य हमें आनंद नहीं दे रहा। हम ये सोचते थे कि यहाँ पर यज्ञ करेंगे और आनंदित होंगे, परंतु कर्मण्यस्मिन् नाश्वासे, इस कार्य का तो कोई निश्चित भी नहीं है कि संपन्न कर पाएंगे 1000 साल तक यज्ञ कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि धूम धूम्रात्मना भवान, अभी से ही धुएं से हमारे मुख काले हो गए हैं, अभी से हम व्याकुल हो गए हैं, अभी से ही हमको इसमें आनंद नहीं आ रहा था, तो आगे भला इसमें कैसे आनंद आता। लेकिन आपाययति गोविंद, आपने जो हमें भगवान की कथाएं सुनाई हैं उससे हमें बहुत हर्ष हो रहा है, आनंद आ रहा है। पाद पद्मा स्वम मधु, ये भगवान की कथाएं, भगवान के चरण कमल के विषय में श्रवण करना, ये तो मधु की तरह है। आनंद मतलब जिस तरह से मधु में हनी में कितना आनंद होता है, उसी तरह से हम श्रवण कर रहे हैं और आनंद आ रहा है। तो कृपया हमें इस कथाओं को सुनाती रहिए। आगे कहते हैं, तुलयाम लवीनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यमानं किमोताशच। कि तुलयाम लवीनापि, यानी लव मात्र जो होता है, क्षण भर भी यदि हमें किसी शुद्ध भक्त के द्वारा से भगवान की कथाओं का श्रवण करने को मिलता है, ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, तो उसका कंपेयर ना तो स्वर्ग के साथ हो सकता है और ना ही मुक्ति के द्वार, क्योंकि भगवत संगी संगस्य, जो भगवान के भक्त होते हैं उनका संग मर्त्यानाम किमुताशिष, जो हम जैसे जो जीव होते हैं जो मरने वाले हैं, किम होता शिष्य, उनके लिए संसार का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सबसे बड़ा वर है कि वो भगवान के भक्तों के द्वारा भगवान की कथाओं को श्रवण कर सके। फिर सूत गोस्वामी उनके आग्रह को सुनने के बाद वे कहते हैं, वास्तव में मैं इस योग्य नहीं हूँ। अहो वयम जन्म मृतोध्यास्य वृद्धानुर वृत्त्यापि विलोम जाता दौष्कुल्यमाधिम विदिनोति शीघ्रम महत्तमाना अविदानयोग। अहो वयम जन्म मृतो वेतोध्यास्य, मैं तो अच्छे कुल में जन्म नहीं लिया हूँ, यद्यपि हम मिश्र यानी संकर जाति में उत्पन्न हुए हैं, फिर भी वृद्धानु वृत्त्यापि विलोम जाता, भले ही मैं उस तरह ऐसे उसमें कुल में जन्म लिया हूँ, फिर भी हमें उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हुआ है। दोषकुल्य माधम विदनोति शीघ्रम, जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हमारे कुल के हमारे जितने भी दोष होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। महत्तमानम अभिदान योग, जैसे ही हमारा भक्तों के साथ संगति हो जाती है तो हमारा सारा अपराध, हमारे सारे जो दोष होते हैं वो नाश हो जाते हैं। कुतः पुनर्गृह्यतो नाम तस्य महतमेकांत परायणस्य, योनंत शक्ति भगवान अनंतो महत गुणत्वात् यमनंत माहु। कुतः पुनर् गृणतो नाम तस्य, फिर उन लोगों का क्या कहना जो भगवान का नाम लेने वाले हैं। महत्तम एकांत परायण, जो महान भक्तों के निर्देशन को स्वीकार करते हैं, गुरु से दीक्षा लेते हैं और भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। योनंत शक्ति भगवान अनंतो, भगवान स्वयं अनंत है, भगवान की शक्ति अनंत है, भगवान के गुण अनंत है। महत गुणात्वात् यमनंत माहु, असीम भगवान की असीम शक्तियों के कारण जो भक्त उनकी भक्ति करते हैं वो भी दिव्य हो जाते हैं, उनके अंदर भी दिव्य गुण हो जाते। तो हम मैं अभी वे कहते हैं कि मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, आप जो भगवान के विषय में सुनना चाहते हो तो वो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि भगवान की लीला अनंत है, भगवान की लीलाओं का कोई अंत नहीं है, तो सारे जितने भी महात्मा गण होते हैं वो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, जितनी जिस तरह से एक पक्षी होता है वो जितनी उसकी उड़ान जितना उसके अंदर स्टेमिना होता है उतना ही उड़ता है, उसी तरह से हम जितना हमारे अंदर क्षमता होती है ना उतना ही भगवान की वर्णन कर सकते हैं, भगवान के गुणों का। भगवान के गुण असीम है, तो वे कहते हैं अहम हितिष्टो यमनो भवति अचक्ष आत्मा वगमो त्रयावान, नभः पतन्ति आत्मसमं पतन्त्री तथा समं विष्णुगतिं विपश्यत। हे सूर्य के समान शक्तिशाली ऋषियों, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु की दिव्य लीलाओं के विषय में वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर तक जा सकता है जितनी उसमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। इतना कहने के बाद महाराज परीक्षित की उस समय जब वो शिकार करने गए थे उस समय क्या दशा हो गई थी, किस तरह से वो अपने समस्त साथियों से बिछड़ गए थे, शिकार करते करते किरण का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए और उनको बहुत ही तीव्र तृष्णा, बहुत ही तीव्र प्यास लग रही थी और वो प्यास के लिए कोई जलाशय ढूंढ रहे थे कि कहीं से मुझे पानी मिले और मैं अपनी प्यास बुझाऊं, लेकिन उनको कोई जलाशय तो नहीं मिला। वो शमीक ऋषि की कुटिया को देखकर उसके अंदर गए, उन्होंने सोचा ऋषि अवश्य मेरा स्वागत करेंगे, मुझे जलपान कराएंगे। वो ये नहीं चाहते थे कि क्योंकि मैं यहाँ इस पृथ्वी का राजा हूँ तो राजसी ढंग से मेरा ऋषि जो है वो सम्मान करे, परंतु वो इतना तो चाहते थे कि एक साधारण शत्रु भी हमारे घर पर यदि कोई आता है तो अवश्य हम उसको बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं, तो इतना तो कम से कम मुझे सम्मान मिलेगा, दो शब्द मीठे बोलेंगे। लेकिन जब वो ऋषि के आश्रम में गए, बहुत देर तक याचना की कि भाई मुझे पानी पीना है, मुझे बहुत प्यास लगी है, उठिए महात्मा मुझे पानी पिलाइए, परंतु उन राजा का कोई सादर सत्कार नहीं हुआ, कोई उनको बिठाया नहीं गया, कुछ मीठे शब्द नहीं बोले गए। राजा को थोड़ा सा क्रोध आने लगा और राजा ने कहा कि इतना ये ऋषि कहीं ऐसा ना हो कि ये ढोंग कर रहा है, कि ढोंग तो नहीं कर रहा है, मैं इसको चेक करूं। तो जमीन पर पड़े हुए एक मृतिक सर्प को उनके गले में डाल दिया, लेकिन क्योंकि ऋषि वास्तव में भगवान के भक्त थे, भगवान के ध्यान में लगे हुए थे, इसलिए वो जागे तो नहीं, लेकिन महाराजा परीक्षित पुनः अपने भवन में गए और वहां पर जाकर उन्होंने ये विचार किया कि मैंने खामखा ऐसा किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। हो सकता है वो ऋषि वास्तव में तपस्या कर रहे थे, इतना वो सोच रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे कि ऋषि शमीक का पुत्र श्रृंगी जो है वो अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। वहां पर किसी ने आकर उसे बताया कि एक राजा ने तुम्हारे पिता के गले में मृतिक सर्प डाल दिया है। और इतना सुनने के बाद श्रृंगी ऋषि को बहुत ज्यादा क्रोध आया और वहीं पर कौशिकी नदी का जल लेकर महाराजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर अंदर मरने का शाप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक सर्प आएगा और आपको डसकर मार डालेगा। जब इतना बोलने के बाद वो पुनः अपने पिता के आश्रम में आया, वहां देखा पिताजी जो है वो ध्यान में मग्न है और उनके गले में सर्प पड़ा, देखकर जोर जोर से रोने लगा। और पुत्र के रोदन को सुनकर जब शमीक ऋषि के नेत्र खुले, उन्होंने सांप को तो नीचे फेंक दिया, बोला बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों इतना जोर जोर से रो रहे हो? तो श्रृंगी ऋषि ने वो सारी वार्ता सुनाई कि आपको फिक्र करने की पिताजी कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने उस राजा को श्राप दे दिया है, अब वो 7 दिन के बाद मर जाएगा। तब ऋषि शमीक ने उनको शाबाश बेटा शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे नहीं कहा, उन्हें बोला नहीं बेटा तुमने बहुत बुरा अपराध किया है, इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा देती, ये इतने पवित्र राजा हैं, इनके कारण ही तो हम सब जो है वो आनंद से जी रहे हैं, सारी प्रजा के आनंद का सुख का पूरा क्रेडिट राजा को जाता है। अब राजा चले जाएंगे तो हर जगह अधर्म, हर जगह चोरी डकैती, स्त्रियों का अपहरण और ये सब, धन कोई किसी का धन लूटेगा, कोई किसी का कुछ लूटेगा, सब कोई एक दूसरे को परेशान करना, हर जगह अधर्म ही अधर्म हो जाएगा। तुमने बहुत गलत किया बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इतना अपने पुत्र को बताने के बाद वो पुनः सोचने लगे कि मेरे पुत्र को तो क्षमा नहीं मिल सकती क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा अपराध किया, और फिर मैं अगर महाराजा परीक्षित के पास जाऊंगा तो महाराजा परीक्षित तो भगवान के भक्त हैं, वो अगर इसको दंड देते तो हो सकता है इसका कल्याण हो जाए, लेकिन वो दंड नहीं देंगे बल्कि स्वीकार करेंगे इस श्राप को। तो महाराजा शमीक ऋषि जो है वो भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान से कहा कि आप मेरे अबोध पुत्र को, मेरे पुत्र के अंदर ना समझिए, बालक है, आप उसके इस अपराध को क्षमा कर दीजिए, और क्योंकि आप ही क्षमा कर सकते हो, आप तो हर किसी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा स्वरूप हो, आप क्षमा कर दीजिए। और इतना कहने के बाद सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं कि वो भले किसी, कोई उसका तिरस्कार कर दे, कोई उसका अपमान कर दे, कोई उसको ठग ले, या कोई भी उसके साथ जैसा भी व्यवहार करे, श्राप दे दे, विचलित कर दे, या चाहे मार भी दे, तो भी जो भगवान के भक्त होते हैं, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपि, फिर भी वो कभी बदला नहीं लेते, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो संतुष्ट होते हैं। अब और दूसरी आज के श्लोक में वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, इति पुत्र कृता घेन, अपने पुत्र के कार्य को घेन कह रहे हैं। अघेन का मतलब होता है बहुत बड़ा पाप, मेरे बेटे ने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया कि उसने इतने पवित्र राजा के को श्राप दे दिया, यानी कि अपनी गलती को देखना। एक भक्त के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि अपनी छोटी गलती भी भले हो लेकिन उसको हमेशा बढ़ा करके देखना चाहिए कि मैंने अपराध किया। ऐसा नहीं है कि भक्त की निंदा करने वाला ही अपराधी होता है, वो भक्त जो अपनी गलतियों को नहीं देखता, जो सदैव दूसरों को मौका देता है। यदि हम भक्त होने के बाद भी ऐसा कोई कार्य करेंगे जिसको जिसके कारण दूसरों को मौका मिलेगा हमारी निंदा करने का, तो हमारा कितना बड़ा अपराध है ना, कि हम दूसरों का, भक्तों का काम है दूसरों का कल्याण करना। वैष्णव जनते ताहे कहिए जे पीर पढ़ाई जाने, वो ये देखे, वैष्णव तो वो होता है वो ये देखे कि लोगों को अपराध से बचाए, और वही उसके अपराध करवाने का कारण बन रहा है, तो उसे सदैव अपनी गलतियों को देखना चाहिए। जैसे कि महाराजा ये ब्राह्मण
शमीक ऋषि देख रहे हैं, इति पुत्र कृताघेन, कि मेरे पुत्र ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। हमेशा दुखी होना चाहिए, जरा सी गलती भी यदि कुछ हो जाए ना हमसे, अपने जो भी कार्य हम कर रहे हैं अपने कार्य के ऊपर पूरी दृष्टि होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, दूसरों के अंदर बुराइयां ढूंढते हैं कि वो देखो कैसे कर रहा है, वो भक्त है उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ये भक्त इस तरह से बात करता है, वो अच्छा नहीं कर रहा है, ये भक्त होकर ऐसे कार्य कर रहा है, ये भक्त होकर ऐसे करता है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर शमी कृषि हमें दिखाना चाह रहे हैं, हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि वो कहते हैं इति पुत्र कृता गेन सोनु तप्तो महामुनि। महामुनि शमी की कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन उनके पुत्रों ने जो गलती की थी, उसके पुत्र ने जो इतनी बड़ी गलती की थी, उसके कारण वो अनुतप्तो बहुत अधिक पश्चाताप कर रहे थे, दुखी हो रहे थे, उनको बहुत दुख हो रहा था कि मेरे पुत्र ने इतनी बड़ी गलती कर दी। उस राजा ने मेरे साथ क्या किया, एक बार भी नहीं सोचा कि हाँ अच्छा किया इसने, मैं भी तो बैठ के समाधि में बैठा हुआ था, तपस्या कर रहा था, राजा है उसको क्या जरूरत थी मेरे गले में ना मरा हुआ सांप डालने की, मेरा भी कोई मान है सम्मान है, उसको ऐसा ये राजा था ना इसने इतनी बड़ी गलती की, चलो ठीक है थोड़ी उसको सजा भी मिलनी चाहिए, कुछ नहीं ऐसा सोचा, बल्कि क्या सोचा, स्वयं विप्र कृतो राज्ञा, स्वयं राजा ने जो विप्र के साथ किया नैवागम तदचिन, उसके बारे में तो उसने एक बार भी नहीं सोचा, तदा चिंतित एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। बल्कि इसीलिए हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारे साथ यदि कोई बुरा करता है तो उसको हमें इतना ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, हमें बल्कि सोचना चाहिए अच्छा हो सकता है कि पिछले जन्मों में मैंने कुछ उसके साथ गलत किया होगा तो कट गया, अच्छा है अगर कोई दुख मिलता है ना तो हमें खुश होना चाहिए कि अवश्य ये दुख तो किसी न किसी पाप कर्म की सजा है ना। दुख अगर कोई भी कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है, हानि हो रही है, तो हमें सोचना चाहिए अच्छी बात है पाप कट गया। लेकिन अगर हमारे द्वारा किसी को कोई दुख मिले तो हमें दुखी होना चाहिए कि मेरा पाप तो कितना बढ़ गया, अब न जाने इस पाप का मुझे कितना बड़ा दंड भुगतना पड़ेगा। सदैव अपने कर्मों के प्रति सचेत होना चाहिए, हमेशा ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे कारण किसी को दुख हो। तो क्योंकि राजा महर्षि शमी के पुत्र के कारण राजा को इतना बड़ा शाप मिला था, तो इसके कारण वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे, और अपने राज्ञा ने जो उनके साथ किया था, स्वयं विप्र कृतो राज्ञा नैवागम तदचिंत, उसके विषय में उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने कोई बड़ा अपराध किया। उन्होंने कहा ठीक है ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मरा हुआ सांप डाल दिया तो क्या हो गया, उसके बदले में मेरे बेटे ने तो कितना बड़ा अपराध किया। और आगे वाले श्लोक में बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण बात बताते हुए कहते हैं, प्रायशः साधव लोके, जो वास्तव में साधु होते हैं, संत होते हैं, जो आध्यात्मवादी होते हैं, परय द्वंद्वेषु योजिता, यानी कि वो द्वैत में योजिता यानी लगे हुए होते हैं, वो भगवान के साथ उनका योग होता है, जो भगवान आध्यात्मवादी होते हैं, जो चाहे आध्यात्मवादी, वो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं तीन प्रकार के होते हैं, एक ज्ञानी होते हैं, एक योगी होते हैं और भक्त होते हैं। ज्ञानी का लक्ष्य क्या होता है कि मुझे भगवान के अंदर, ब्रह्म के अंदर तदाकार होना है, ब्रह्म के अंदर लीन होना है और सिद्धि प्राप्त करना, तो उसका पूरा लक्ष्य के ऊपर ध्यान होता है कि मुझे क्या करना है, ब्रह्म को प्राप्त करना है। फिर भौतिक जगत में क्या हो रहा है उससे उसको कोई भी लेना देना नहीं होता। दूसरे आध्यात्मवादी कौन होते, योगी होते हैं। योगी क्या करते हैं, सर्वव्यापी जो परमात्मा है उसकी अनुभूति करना चाहते हैं, हृदय के अंदर परमात्मा का ध्यान करते हैं, वो सदैव ध्यान में लगे होते हैं, जिस तरह से ये शमी कृषि लगे हुए थे वो भगवान के अंदर। तो बाहर मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है, कोई मुझे अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, कोई मुझे क्या भी कर रहा है, तो उसके अंदर उसका ज्यादा इंटेंशन नहीं होता। और तीसरे नंबर के आध्यात्मिकवादी क्या होते हैं, वो भगवान के भक्त होते हैं। तो भक्तगण क्या होते हैं, वो सदैव भगवान की दिव्य सेवा करने में लगे होते हैं। अब क्योंकि उन सबको ये पता होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। आध्यात्मवादी मतलब वो आध्यात्म में स्थित होते हैं, उन्हें अपनी स्थिति के विषय में पता होता है कि भौतिक शरीर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। उसके साथ कोई कैसा भी सलूक करे, चाहे कितना भी उसको कष्ट पहुंचा जाए। प्रहलाद महाराज वो भगवान के छोटे से नन्हे से भक्त थे और उनके पिताजी ने उनको मारने के कौन से अधिक तरीके आजमाए। कभी उनको पहाड़ों से फेंकवा देते थे, कभी दरिया में डाल देते थे, कभी कढ़ाई में उसको फ्राई करते थे, तो कभी सांपों वाले रूम में बिठा देते थे। लेकिन वो जानते थे कि ये शरीर तो समाप्त होने ही वाला है ना। जब वो कहते थे अगर भगवान चाहेंगे कि इन कष्टों के द्वारा मेरी मृत्यु हो जाए तो फिर मैं चाहकर भी अपने आप को नहीं बचा सकता, और यदि भगवान मुझे बचाना चाहेंगे तो फिर मेरा बाप चाहे कुछ भी कर ले, नहीं मैं मुझे कुछ नहीं होगा। तो भक्त जानता है कि ये शरीर तो एक साधन है, लेकिन ये शरीर का जो भी उसके साथ हो रहा है वो भगवान की योजना है, तो उसके बारे में उसको कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि वो अपने लक्ष्य की ओर सिंसियर होता है, सीरियसनेस के साथ अपने लक्ष्य को कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है। ये भौतिक जगत के लिए न व्यथन्ति न हृष्यन्ति। अगर कुछ दुखी होने वाली कोई वस्तु होती तो उसके लिए व्यथित नहीं होता, और अगर कुछ आनंद देने वाली वस्तु मिलती है तो उसके लिए वो हर्षित नहीं होता। तो ये शमिक ऋषि बहुत बड़े योगी थे और महाराजा परीक्षित बहुत बड़े भक्त थे, तो वो दोनों ही इस कार्य से दुख, मतलब शमिक ऋषि अपने अपना अपमान से और महाराजा परीक्षित अपने अपना अपमान से नहीं दुखी हो रहे थे, बल्कि ये सोच रहे थे कि हमने महाराजा परीक्षित इसलिए पश्चाताप कर रहे थे, मैंने मुनि के साथ ऐसा क्यों किया, और मुनि इसलिए पश्चाताप कर रहा था कि मेरे बेटे ने राजा के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर बात बताई है कि वास्तव में ये सब भगवान की योजना है, सब कुछ भगवत इच्छा से हो रहा था, और इस इच्छा पूर्ति में महाराजा परीक्षित, ऋषि शमिक तथा उनका पुत्र श्रृंगी, ये तीनों निमित्त मात्र थे। ये तीनों निमित्त हैं, भगवान की इच्छा से ये हो रहा था। कोई कैसे पूछ सकता है कि भाई महाराजा परीक्षित ने ऐसा क्यों किया, या फिर शमिक के बेटे ने ऐसा क्यों किया? क्यों किया, ये भगवान की योजना थी, ऐसा होना था। भगवान महाराजा परीक्षित को अपने पास बुलाना चाहते थे, और हम जैसे पतित जीवों के लिए श्रीमद भागवतम महापुराण का प्रचार कराना चाहते थे। इसलिए महाराजा परीक्षित ने मूर्ख ब्राह्मण द्वारा दिए गए शाप की कोई परवाह नहीं की, बल्कि उन्होंने इस विषम स्थिति का लाभ उठाया कि किस तरह से इस मरण आसन स्थिति में कि मैं अभी मरने वाला हूं, तो मैं सुखदेव गोस्वामी की कृपा से, उनके माध्यम से जीवन के चरम लक्ष्य को, चरम सिद्धि को प्राप्त करके दिखाया हम जैसे पतित जीवों को कि यदि आप भी भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको भी श्रीमद् भागवत महापुराण का अवश्य श्रवण करना चाहिए। इसी से हम जीवों का कल्याण होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज से हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतिम पड़ाव में प्रवेश कर रहे हैं। कृपया मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।